तो आज का जो टॉपिक है इसका उन्वान है खुदा का रंग। कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 138 में खुदा फरमाता है, सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाही सिबगा, और खुदा के रंग में रंग जाओ और खुदा के रंग से बेहतर किसका रंग है। तो खुदा के रंग में रंग जाओ, हमने कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है, खुदा का रंग कौन सा है, कहां पर है, किस तरह हम अपने आप को रंग सकते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मेरे रंग में रंग जाओ और मेरे रंग से बेहतर और किसका रंग हो सकता है, बस तुम मेरी ही इबादत करो। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 138 है। पीरों ने भी गिनान में फरमाया, एजी लगरी रे प्रीता हमने हना छोरू दरसीर करवत अंग न मोरू, जो जीव जावे शाह का नाम न छोरू बिसाया हे तो पाए रंग लागो रे, बिसाया पीर पाए रंग लागो रे। कि या मौला तेरी मेरी मोहब्बत ऐसी हो कि तलवार के साये में भी मैं दरेग न रखूं, अपनी जान को कुर्बान करूं, और तेरी ऐसी मोहब्बत हो कि उस मोहब्बत का रंग मुझे लगे, मुझे पीर कामिल का रंग लग जाए। और पीरों ने और भी जगह पर फरमाया है कि एक जगह तो पीर फरमाते हैं कि जीरे भाई गुर ने पूछी तमे करनी कमाओ तो उत्तम रंग रंगारो। अगर पीर को पूछ के, मौला को पूछ के तुम काम करते जाओगे तो तुमको इंतहाई आला किस्म के रंग में रंग देगा। तो इसका मतलब है मौला का कोई रंग है, और वो रंग कैसा है, दुनिया में बहुत सारे रंग हैं, उन रंगों जैसा है या उनसे मुख्तलिफ है या उसका कोई और मतलब है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सिबगा जो अरबी का एक लफ्ज है, इसका मतलब है रंगना, डिबो देना यानी किसी चीज में सोख करना, या इसका एक मतलब है ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना किसी चीज को, ये इसका लफ्जी मानी है। और लफ्जी मानी से भी हमको इसके तावीली मीनिंग को समझने के लिए एक रास्ता मिलता है। अभी इमाम जैनुल आबिदीन का एक कौल है जो एक मशहूर इस्माइली किताब है किताब उज़ीना, उसमें इमाम जैनुल आबिदीन का एक कौल है। इमाम फरमाते हैं कि खुदा ने अपने अर्श को मुख्तलिफ अनवार से बनाया, नूर की जमा अनवार, खुदा ने अपने अर्श को मुख्तलिफ अनवार से बनाया, खुदा ने अपने अर्श को सब्ज नूर से बनाया जो दुनिया में सब्ज रंग बन गया, ग्रीन कलर बन गया, खुदा ने अपने अर्श को सुर्ख नूर से बनाया जो दुनिया में रेड कलर बन गया, खुदा ने अपने अर्श को येलो कलर से, येलो नूर से बनाया जो दुनिया में आकर येलो कलर बन गया, और खुदा ने अपने अर्श को व्हाइट लाइट से बनाया जो दुनिया में आकर व्हाइट कलर बन गया। अब आप देखें यहां नूर और कलर दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इमाम जैनुल आबिदीन फरमाते हैं खुदा ने अपने अर्श को चार किस्म के अनवार से बनाया, सब्ज नूर, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट और व्हाइट लाइट। मौला ने अपने अर्श को इन चार लाइट से बनाया और ये चार लाइट्स दुनिया में चार कलर के तौर पर जाहिर हो गए। तो खुदा का नूर दुनिया में, चूंकि वो रूहानी दुनिया की बात है, रूहानी दुनिया से नूर जब दुनिया में आता है तो वो किसी मटीरियल फॉर्म में आता है, वो किसी मटीरियल चीज की सूरत में आता है कि हम उस पर गौर करें, उसको समझें। तो दरअसल ये फोर लाइट्स थी और इन जर ये चार कलर भी हैं और ये चार किस्म की लाइट्स हैं। तो इन चार किस्म की लाइट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। येलो लाइट है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है और व्हाइट लाइट है। खुदा ने इन चार अनवार का जिक्र किया है। तो इन, चूंकि खुदा कहता है मेरे रंग में रंग जाओ और यहां पर चार रंगों का जिक्र मिलता है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन चार रंगों का खुदा के रंग से क्या ताल्लुक है। तो इसके लिए सूरह बकरा में एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, एक मोमिन की रूहानी तरक्की की बात है। लेकिन आपको मालूम है कि जो कुरान का किस्सा होता है वो ऐसे हिजाब और पर्दे में बयान होता है कि उस पर सोचना पड़ता है, उसकी हिकमत को समझना पड़ता है। तो अगर कुरान की स्टोरीज माजी का वाकया होता, माजी की कोई स्टोरी होती, तो फिर तो कुरान तारीख की किताब होती, लेकिन कुरान तालीम की किताब है। आप इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट टू को पढ़िए जिसमें मौला फरमाते हैं कि अली और उसकी औलाद के जरिए से तालीम और तावील का सिलसिला जारी रहेगा। ये इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रीएम्बल है, उसमें मौला ने फरमाया है कि अली और उसकी औलाद के जरिए से तालीम और तावील का सिलसिला जारी रहेगा। तो तालीम और तावील दीन की बुनियादी बातों की होती है, कुरान की आयात की होती है, इमाम की फरमान की होती है, गिनान की होती है। तो यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे, ये एक वाकया है कि हजरत मूसा कोह तूर पर इबादत के लिए जाते थे, उस दौरान उनकी कौम में एक शख्स को किसी ने कत्ल कर दिया। जब हजरत मूसा वापस आए तो उनको ये बताया गया कि इस शख्स को किसी ने कत्ल किया है और हमें इसके कातिल का नाम मालूम करना है। तो कहते हैं हजरत मूसा ने फरमाया कि तुम एक गाय लो, उस गाय को जिबाह करो, उस गाय के टुकड़े को इस मुर्दा शख्स पे मारोगे तो ये जिंदा हो जाएगा और बताएगा कि उसका कातिल कौन है। अब ये पूरा वाकया है। तो मूसा की कौम काफी सामने से सवाल जवाब करती है कि कैसी गाय हो और हमें तफसील से बताओ। तो मूसा फरमाते हैं जर्द रंग की गाय हो और वो बच्चा भी ना हो बूढ़ी भी ना हो और उसने अभी बहुत ज्यादा मेहनत का काम न किया हुआ हो। तो इस किस्म की गाय को लेकर जब उन्होंने गाय को जिबा किया और गाय के गोश्त को उस मुर्दा शख्स पे मारा तो वो जिंदा हो गया और उसने अपने कातिल का नाम बता दिया। हिस्ट्री में उस शख्स का नाम भी बताते हैं, लेकिन ये स्टोरी है, ये तारीख का एक छोटा सा वाकया नहीं है। और अगर यही तरीका था कातिल को मालूम करने का तो दूसरे पैगंबरों ने भी इस सुन्नत पर अमल किया होता। इस्लाम में आज भी इस तरीके को एक तरीके के तौर, एक सुन्नत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि भाई आप कातिल का पता जो है वो पीले रंग की गाय को काट के उसके जरिए से पता चला सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो इस स्टोरी के पीछे चूंकि इसमें एक कलर है और जब कलर की बात आई है तो खुदा के रंग से इसका ताल्लुक होगा। कहा गया पीले रंग की गाय चाहिए। तो दरअसल ये एक मोमिन की तरक्की का किस्सा है। पहले हम उस तरक्की की थोड़ा सा सीक्वेंस को देखते हैं, फिर हम इस स्टोरी को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि जब कोई मोमिन मौला से बहुत इश्क करता है, इस्मे आजम की इबादत में खुद को फना करता है, बहुत रियाजत करता है, इंटेंस स्ट्रगल करता है रूहानी तरक्की के लिए, तो उसकी शख्सियत में रियाजत का रंग झलकता है। आपको मालूम है कि दुनिया में कोई शख्स कम खाए, कम सोए और बहुत ज्यादा किसी काम में मसरूफ रहे तो कुछ पेल हो जाता है, वो पीलाहट आती है। तो ये पीलाहट तो दुनिया की है जो दुनिया की कमजोरी को जाहिर करती है, मगर रूहानी तौर पर अगर ये रियाजत का रंग है तो ये बड़ा, अगर आप इबादत करते हैं जैसे सतारा होता है, सात दिन हम जाते हैं इबादत करते हैं, अगर सतारे की नीयत से उन दिनों में हम कम खाएं, कम बोलें, कम सोएं, तो हमें कितनी खुशी होती है। हरचंद के जाहिर में एक रियाजत हो रही होती है, रूहानी तौर पर एक जर्द रंग हासिल हो रहा होता है, लेकिन हमें उस रियाजत की भी बहुत खुशी होती है। तो जब कोई मोमिन रूहानी तरक्की के लिए अपनी रियाजत को बहुत आगे बढ़ाता है तो एक मकाम ऐसा आता है जिसमें खुदा, एक हदीस है, मूतु कबल अन तमूतु, तुम मौत से पहले मर जाओ। तो हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि अगर तुम कर सकते हो तो इबादत में अपनी रूह को निकालकर तजुर्बा करो, अपनी रूह को जिस्म से निकालने का तजुर्बा करो। ये मौला के फरामीन में है। और मिशनरी कारारूरा जो एक बहुत अजीम मिशनरी थे, उनके लिए कहते हैं कि वो अपनी रूह को अपने जिस्म से बाहर निकालते थे, और जब उनका ऑपरेशन होना था और क्लोरोफॉर्म नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कहा कि क्लोरोफॉर्म की जरूरत नहीं है, मैं अपनी रूह को बाहर निकालता हूं और मेरा ऑपरेशन करें। तो इस्माइली हिस्ट्री में ऐसे बुजुर्गों का जिक्र है जो अपनी रूह को अपने जिस्म से निकाल सकते हैं। दरअसल ये मूतू कबल अन तमूतू का एक मरहला है। जब कोई मोमिन बहुत तरक्की करता है तो उस पर मौत की सी कैफियत गुजरती है, मगर ऐसा नहीं होता है कि वो पूरी तरह मर जाता है। उस पर मौत की सी कैफियत गुजरती है, उसकी रूह जिस्म से बाहर आती है, फिर जिस्म के अंदर आती है, जिस्म से बाहर आती है, फिर जिस्म के अंदर आती है। ये कुर्बानी का रंग होता है जो लाल रंग का होता है, ये कुर्बानी होती है जो कि सुर्ख नूर की तरह है, क्योंकि चार रंगों से खुदा का अर्श बन रहा है। ऐसा नहीं है कि आसमान में खुदा ने एक कुर्सी रखी है और उसको पहले येलो पेंट कर रहा है फिर रेड पेंट कर रहा है। ये खुदा अपना अर्श कहां बना रहा है? एक मोमिन के दिल में जो रूहानी तरक्की कर रहा है। पहले उसको पीले रंग से उसने सजाया, ठीक है, रियाजत का नूर गुजरा, इसके बाद मूतू कबल अन तमूतू का तजुर्बा उस पर गुजरा तो लाल रंग के नूर से उसको सजाया। इसके बाद जब वो कुर्बान हो जाता है तो कुर्बान होने के बाद उसके दिल का बाग हरा भरा हो जाता है, उसके दिल का बाग सरसब्ज हो जाता है, वो रूहानी तौर पर और इल्मी तौर पर आबाद हो जाता है। तो ये ग्रीन लाइट है जिससे खुदा ने اپنا عرش اس کے دل میں بنایا. اور کہتے ہیں کہ روحانی جو تجربے ہوتے ہیں, جو لیولز ہوتے ہیں, اس میں آخر میں وائٹ رنگ کی روشنی ہے. اس کے لیے امام جعفر صادق کا ایک قول ہے جو اسی کتاب کتاب الزینہ جو ہماری ایک اسماعیلی بزرگ کی کتاب ہے, اس میں امام جعفر صادق کا ایک قول ہے کہ بہشت میں سفید رنگ کی ایک نہر ہے. ایک بہت اونچا اور اعلی مقام ہے بہشت کا جہاں سفید رنگ کی نہر ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ بہشت کوئی مکانی چیز نہیں ہے, کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں اسپیس میں فلاں جگہ پر خدا کی بہشت ہے. یہ ایک مومن کے باطن میں بنتی ہے, مولا کی جماعت کے اندر ہوتی ہے. تو روحانی ترقی کے آخری مقام پر ایک مومن وائٹ لائٹ کا معجزہ دیکھتا ہے, اور یہ سب اسماعیلی کتب سے ہم بتا رہے ہیں. پیلا رنگ ہم کو قرآن سے پتا چلا, لال رنگ فرمان سے کہ تم اپنی روح کو اپنے بدن سے نکالو. تو روح کو نکالنے میں ایک موت ہوگی, ایک قربانی ہوگی, اور وہ لال رنگ کے نور کی مثال ہے. اور پھر جو اس کے اندر آبادی ہوگی وہ سبز رنگ کے نور کی مثال ہے. اور جو آخر میں وہ معجزہ دیکھے گا وہ وائٹ لائٹ کی صورت میں ہوگا. پھر ناصر خسرو نے اس کو اپنی کتابوں میں گوہر عقل کہا ہے کہ تم عقل کا موتی دیکھو گے ایک آخری مقام پر. تو بہشت میں ایک نہر ہے سفید رنگ کی, تو ممکن ہے وہ موتی سفید رنگ کا ہو, اس کے اندر کوئی معنی ہو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ امام زین العابدین یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے عرش کو چار قسم کے نور سے بنایا. تو اگین خدا نے اپنے عرش کو آسمان پہ ایک جگہ پہ رکھ کر, لکڑی کا تھا, سونے کا تھا یا اسٹیل کا تھا, پھر خدا نے اس کو پینٹ کیا یلو کلر یا ریڈ کلر, گرین کلر, ایسا نہیں ہے. اس نے ایک ایسے مومن کے باطن میں اپنا عرش بنایا جو ترقی بہت بلندی سے کر رہا ہے. اور اس میں ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے پیر ہیں جو ان تمام مراحل سے گزر گئے. مولا نے ان کے دل میں اپنا تخت بنایا, پہلے ان کو ریاضت کرائی, اور ایسی ریاضت کرائی کہ یلو نور سے ان کے دل میں ایک تخت بننا شروع ہوا. پھر ان کو موتو قبل ان تموتو کے تجربے سے گزارا, انہوں نے اپنی روح کو اپنے جسم سے نکال کر ایک ایکسپیریمنٹ کیا, اور وہ کوئی عام ایکسپیریمنٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت ساری برکتیں اس کو حاصل ہو گئیں. تو وہ لال رنگ کے نور, چونکہ قربانی ہوئی تو لال رنگ کے نور سے اس کا تخت جو عرش تھا خدا کا, اس میں کچھ حصہ لال نور کا تھا, تو اس کی قربانی لال نور کی ہو گئی. پھر قربانی کے نتیجے میں اس کا دل سرسبز ہو گیا, آباد ہو گیا, مولا کے علم سے آباد ہو گیا. تو اس صورت میں گرین کلر کے نور سے اس کا دل جو ہے وہ آباد ہو گیا. اور آخر میں جیسے امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ بہشت کے ایک اعلی مقام پر ایک سفید رنگ کی نہر بہتی ہے, تو اس کا مطلب آخر میں وہ ایک وائٹ لائٹ دیکھتے ہیں یا کوئی ایک وائٹ میریکل دیکھتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ خدا کا رنگ جو ہے وہ انوار کی صورت میں ہے, اور وہ ایک مومن کی روحانی ترقی کا کے مرحلے ہیں. ریاضت کرے, قربانی کرے, مولا کی علم کو پا کر سرسبز ہو جائے, اور وائٹ لائٹ کے معجزے تک پہنچ جائے. تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ گائے کا قصہ کیا تھا. یہ گائے کا قصہ بھی یا تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصہ ہے کہ وہ روحانی قربانی سے گزرے, پہلے پیلے رنگ کی ریاضت کی, پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے, تو لال رنگ کا نور پیدا ہوا, اس کے نتیجے میں ان کے دل میں گرین لائٹ آئی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وائٹ لائٹ کو دیکھا. اور اس تجربے کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ یا تمام پیغمبر اور امام ایک ذبح شدہ گائے کی صورت میں ہو گئے کہ ان کو ذبح کیا گیا ہے. اب ان کے نور کا ٹکڑا کسی مردہ مومن پہ مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. یعنی اسم اعظم سے اس مومن کو تعلیم دی جائے, اس مومن کو مولا کے معجزے سے قریب لایا جائے, مولا کے نور سے. جیسے دنیا میں ایک فروٹ ٹری ہوتا ہے, وہ اچھے فروٹ نہیں دیتا ہے, تو آپ ایک اچھے فروٹ ٹری سے گرافٹنگ کرتے ہیں. تو ہماری اپنی ہستی خام ہے, نا تمام ہے, مولا ہم کو اسم اعظم دیتا ہے, گرافٹنگ کرو, نور کی گرافٹنگ کرو تاکہ تمہاری پوری شخصیت نورانی ہو جائے. تم چاہو تو پھر صدر دین جیسے بن سکتے ہو, مولا نے فرمایا. یعنی تم نور کی گرافٹنگ کرو تاکہ تمہاری یہ شخصیت جو اچھا میوہ نہیں دے رہی ہے, جو نور نہیں پیدا کر سکتی ہے, اس نور کی گرافٹنگ سے تم ٹرانسفارم ہو جاؤ. چونکہ رنگنے کا ایک مطلب ہے ٹرانسفارم ہونا. عربی میں جو لفظ ہے صبغہ, اس کا ایک مطلب ہے ٹرانسفارم ہونا. تو مومن جب ٹرانسفارم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے خدا کے رنگ میں رنگنا. तो दरअसल हजरत मूसा का किस्सा है या किसी और बुजुर्ग का किस्सा है, जब वो रूहानियत में रियाजत से आगे बढ़ा, कुर्बानी से गुजरा, सब्ज रंग की के नूर को देख लिया, व्हाइट लाइट तक पहुंच गया। अब कातिल का नाम बताना है, ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि इस किस्से में है कि कातिल का नाम बताना है। तो एक हदीस कुदसी है, खुदा फरमाता है कि मेरा जो बंदा मेरी मोहब्बत में हद से बढ़ जाता है मैं उसको कत्ल कर देता हूं। फिर वो मेरे ही दरबार में अपील करता है कि मुझे कत्ल किया है तूने, मेरा इंसाफ कर। तो मतलब हदीस में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, हदीस में सिर्फ इतना है कि मेरा जो बंदा मेरी मोहब्बत में हद से गुजर गया मैं उसको कत्ल करता हूं और फिर उसके खून बहा, यानी खून के बदले में जो खून होता है वो भी मैं खुद हूं। तो यानी मोमिन खुदा के हुजूर में जाकर किसी मोमिन पर रियाजत के बाद अगर रूह के तजर्बे का वक्त आ गया है और वो कत्ल हो गया है तो वो खुदा के हुजूर में फरियाद करता है कि तूने मुझे कत्ल किया है। तो खुदा फरमाता है कि चूंकि मैंने उसकी जान ली थी मैं उसको अपनी जान दे देता हूं। जैसे इस्लाम में है जान के बदले में जान, अगर आपने किसी को किसी एक खानदान के शख्स को कत्ल किया है तो उस खानदान से उनको यह हक है कि वो आपके खानदान से एक शख्स की जान लें। और कुरान में खुदा कहता है अगर तुम माफ करो तो ये इससे बेहतर है। तो जान के बदले में जान एक तरीका था। तो मेरा कोई मोमिन मेरी मोहब्बत में हद से गुजर जाएगा तो मैं उसको कत्ल करूंगा, और जब वो मेरे दरबार में फरियाद लेकर आएगा कि मुझे कत्ल किया गया है तो खुदा कहता है मैंने उसकी जान ली थी मैं उसको अपनी जान दे दूंगा। खुदा जब अपनी जान देगा तो अपनी बसारत भी देगा, अपनी समाअत भी देगा, अपनी ताकत भी देगा। खुदा कोई मास्क तो नहीं देगा ना कि जिसमें सिर्फ उस जैसी आंखें या नाक कान हो। मौला अगर किसी मोमिन को कत्ल करेगा, रूहानी तौर पर शहीद करेगा, तो फिर उसको अपनी जान देगा, अपना नूर देगा, अपना राज देगा, अपनी ताकतें देगा। तो इस किस्से का मकसद यह है कि पीले रंग की रियाजत के मकाम पर जब तुम पहुंच जाओगे तो आगे तुमको जबा किया जाएगा, तुमको मोतू कबला अंत मोतू के मकाम से गुजारा जाएगा और फिर खुदा इसके बदले में तुमको अपनी जान देगा क्योंकि उसने तुम्हारी जान दी है। तो खुदा के रंग में रंगना यह है कि अपने आलम शख्सी में, यानी आखिरी रंग में रंगना यह है कि हर इंसान अपनी पर्सनल वर्ल्ड में मौला का एक तख्त तैयार करे, और मौला का ये तख्त चार किस्म के नूर से तैयार होगा। येलो लाइट से तैयार होगा, जर्द नूर, सुर्ख नूर, रेड लाइट, सब्ज नूर, ग्रीन लाइट और व्हाइट लाइट, सफेद नूर। इन चार किस्म के नूर से, इन चार किस्म के रंगों से मौला का अर्श हमारे दिल में तैयार होगा। अगर चंदन केरी कोटरी सूफल रचिया कमार, तारा दीदा चे प्रेम ना साया खोलन आओ। कि मैंने अपने दिल को सजाया है मोहब्बत से, ईमान से, अकीदत से, और मैंने उसको ताला दिया है तेरी मोहब्बत का, या मौला ये ताला तू खुद खोल कर अंदर आ। पीरों ने अपने दिल में अर्श बनाया था, इस चार किस्म के अनवार से अपने दिल में अर्श बनाकर मौला को पुकारा था कि अब तू आकर इस घर में बैठ। तो ये है मौला के रंग में रंगना। अगर हम अपनी इस जिंदगी में उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते तो ईमान से, अखलाक से, मोहब्बत से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते जाएं, अपने आप को हर कल से बेहतर करते जाएं, तो हम मौला के रंग में रंगते चले जाएंगे। और आपने देखा कि रंग और नूर का एक ही मतलब हुआ, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा खुदा ने अपने तख्त को सब्ज नूर से बनाया जो दुनिया में सब्ज रंग की सूरत में जाहिर हुआ। तो रंग और नूर का ताल्लुक है, इसका मतलब रंग का दूसरे मानी नूर है कि तुम खुदा के नूर में रंग जाओ। तो नूर आमतौर पर शायद हमारी जमात सोचती है कि जब हम नूर का लफ्ज कहते हैं तो इससे मुराद ये लाइट जैसा कोई नूर होगा। हाँ, इबादत में एक मरहला ऐसा भी आता है कि आप लाइट देखते हैं, लेकिन हर वक्त फिर वो लाइट नहीं होती है। आगे से आगे आपको इल्म मिलता है, हिकमत समझ में आती है, तावील समझ में आती है, दूसरे मौजजात होते हैं। तो इसकी मिसाल आप इलेक्ट्रिसिटी से दें कि इलेक्ट्रिसिटी एक पावर है, मगर ये इलेक्ट्रिसिटी जब बल्ब में आएगी तो रोशनी देगी, पंखे में आएगी तो हवा देगी, ग्राइंडर में आएगी तो पावर देगी, और इस्त्री में आएगी तो गर्मी देगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के मैनिफेस्टेशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा लाइट की सूरत में नहीं है। तो नूर जो है वो एक पावर है, एक एनर्जी है, वो हमारी जबान से जाहिर हुआ तो मौला के पाक नाम की गुफ्तगू की सूरत में जाहिर होगा, वो हमारे दिल में होगा तो मोहब्बत की सूरत में होगा। ऐसा नहीं है कि जब हम ये कहें कि मौला का नूर हम हासिल करें तो वो नूर हमेशा इस ब्राइट लाइट की सूरत में होगा, वो नूर हमारी अखलाकी जिंदगी की बेहतरी की सूरत में होगा, उसके इश्क से हमारी आदतें बदल जाएं उस सूरत में होगा, तो उसके नूर में रंगना है। तो इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत अच्छी दुआ है, इसको दुआए नूर कहते हैं। इस पर भी मेरा एक लेक्चर है और आपको ये किताब में दुआ मिल भी सकती है कि ऐ खुदा मेरे लिए मेरे दिल में एक नूर को मुकर्रर कर, मेरे कानों के लिए एक नूर को मुकर्रर कर, मेरी आंखों के लिए, मेरी जबान के लिए, मेरे बाल के लिए, मेरी खाल के लिए, मेरे खून के लिए, मेरे गोश्त के लिए, मेरी हड्डियों के लिए, मेरी रगों के लिए, मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे एक नूर को मुकर्रर कर। तो इसका मतलब क्या होता है, जबान से नूर मुकर्रर होना क्या हो कि मेरी जबान से जब गुफ्तगू हो, दुनिया में भी गुफ्तगू हो, फैमिली में भी गुफ्तगू हो, तो मेरी जबान से ऐसी गुफ्तगू हो जिससे मेरी फैमिली में नूर आए, मौला की मोहब्बत का कोई रंग आए, मैं जमात में भी बात करूं तो जमात में मोहब्बत में इजाफा हो, जमात को समझने में कुछ मदद मिले, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना मिले जिसमें दो लोगों के दिल खराब हो, या कोई फसाद हो जाए, या कोई फितना हो जाए। ये भी तो एक नूर है ना, अखलाक का नूर है। तो मेरी जबान से ऐसे अल्फाज अदा हों जिससे नूर हो, मेरे जहन में ऐसे ख्यालात आए जिससे मेरे खानदान में, मेरे घर में, मेरी जमात में, मेरी कम्युनिटी में नूर फैले। तो आप जब नूर की दुआ कर रहे हैं तो आप अपनी पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करने की दुआ कर रहे हैं, और मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, इसका मतलब मुझे अपने इल्म और हिकमत से इतना मेरे दिल को सजा दे कि मैं जहां भी देखूं मैं इल्म की रोशनी में तुझको देख सकूं, मैं तुझको महसूस कर सकूं, क्योंकि कायनात जो है वो खुदा की एक किताब है, उसको पढ़ना है, उसके अंदर खुदा की प्रेजेंस को महसूस करना है। तो इस माना में जो नूर की दुआ है वो भी खुदा के रंग में रंगने की दुआ है। इसीलिए पीरों ने फरमाया कि अगर तुम गुर को पूछ के एक एक काम करते जाओ रूहानी तौर पर, तो उत्तम रंग रंगारो तुमको बहुत ही आला किस्म के रंग में रंग देगा, तुम्हारे दिल के अंदर नूर का अर्श बनाएगा और उस अर्श पे खुद आकर बैठेगा, और वो अर्श जो है वो मुख्तलिफ रंगों का होगा। अच्छा, कुरान में इसके अलावा रंग का जिक्र जो है वो शहद की मक्खी जो फूलों पे बैठती है और फूलों का रस चूसती है और उसके बाद वो शहद बनाती है। आपको मालूम है शहद की मक्खी एक बड़ी पाकीजा मक्खी है, दूसरी मक्खी कुछ खाती है तो गंदगी भी करती है, मगर शहद की मक्खी की गंदगी नहीं होती है, उससे शहद पैदा होता है। तो हमारे बुजुर्गों ने इस्माइली तालीमात में शहद की मक्खी को या शहद को तावील से तशबीह दी है, यानी जो तावील आपको मिलती है ईमान की तरफ से, जो बातनी मानी आपको मिलते हैं वो शहद है। तो शहद की मक्खी से खुदा कहता है कि फूलों को चूस और मुख्तलिफ रंगों का शहद बना, यानी तावील के मुख्तलिफ शेड्स हों, रियाजत के मुतालिक भी तालीमात हों, कुर्बानी के मुतालिक भी तालीमात हों, दिल के सरसब्ज होने के मुतालिक भी कुछ इल्मी बातें हों, और खुदा के सफेद नूर तक पहुंचने की भी कोई तफसील हो, तो मुख्तलिफ रंगों का शहद बना। तो कुरान में अब जहां भी रंग आएगा वो खुदा के रंग के मौजू से कनेक्टेड होगा, गिनानों में जहां भी रंग का जिक्र आएगा वो खुदा के नूर के रंग से कनेक्टेड मौजू होगा, और जहां पर भी इमाम जब भी कहते हैं कि लाइट, तो लाइट खुद एक रंग है और इस रंग में रंगना है। तो मोमिन में ईमान का नूर, गुफ्तगू का नूर, अखलाक का नूर, समझदारी का नूर और दीन की बातों को समझ के उसको बयान करने के नूर से उसके दिल के अंदर ये रूहानी चीजें जो हैं वो आसान होंगी। एक मकाम ऐसा भी आता है कि मोमिन अपनी आंखों के सामने मौला को देखता है, बातिन में भी, ख्वाब में भी, ये भी तो एक रंग है जो चढ़ गया है, और उस रंग में फिर आप उस अर्श की तजल्लियात को देखते हैं, उसके मैनिफेस्टेशंस को देखते हैं। तो इस मौजू से जैसे इस्माइली परचम है, आप अगर उसको भी देखें उसके अंदर भी कलर्स हैं, व्हाइट है, ग्रीन है, रेड है, तो ये कलर्स भी जिसने अपने दिल में मौला का अर्श बना लिया उसने अपने दिल में मौला की शहनशाहियत को, उसकी बादशाहत को पा लिया, उसके दिल में नूर का एक झंडा भी बन गया है, और उस झंडे के अंदर भी ग्रीन कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर इस बात की निशानदेही करते हैं कि मौला की रूहानी सल्तनत के कुछ रंग हैं और वो नूर के रंग हैं। कुर्बानी का रंग है, आखिरी व्हाइट लाइट है, और ग्रीन तुम्हारा दिल आबाद हो जाएगा नूर से, उसका रंग है। ये हम मुख्तसर कह रहे हैं, लेकिन जब कोई मोमिन इस सफर पे निकलता है तो ये एक लंबा सफर होता है, और पीरों ने, बुजुर्गों ने बहुत मुश्किल से इन रंगों को पाया था और आखिरी दर्जे के रंग से उन्होंने अपनी हस्ती को रंगीन बनाया था। इस थीम से मिलता जुलता एक और कुरानी वाकया है, सूरह 2 की आयत 260 में खुदा इब्राहिम से इब्राहिम खुदा से कहता है कि ए खुदा तू मुझको दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो खुदा इब्राहिम से कहता है क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं रखते हो? तो इब्राहिम कहता है कि नहीं खुदा तुझ पर यकीन रखता हूं, मगर दिल का इत्मीनान चाहिए, मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो खुदा कहता है कि ठीक है, चार परिंदों को ले लो, उन परिंदों को तुम अपना आदि बनाओ, फिर उनको चार मकामात पे रख दो और उनका उनको मार के चार मकामात पे रख दो, फिर उनका नाम लो, वो जिंदा होकर तुम्हारी तरफ आएंगे। अब कहानी ये कुरान में परिंदों के नाम नहीं है, मगर तफसीर में परिंदों के नाम है। और वो कहते हैं उन परिंदों में से एक मुर्ग था, मुर्गा रूस्टर, एक बतख था डक, एक कौवा था क्रो, और एक मोर था पीकॉक। उन चार परिंदों को इब्राहिम ने पहले पाला, उनको अपने साथ आदि बनाया, उसके बाद उनको स्लॉटर कर दिया और उनके गोश्त को मिलाकर उसके चार हिस्से बनाए और चार अलग अलग हिल्स पे रख दिया, चार पहाड़ियों पे रख दिया। और जब हजरत मूसा ने कहा मुर्गा तो रूस्टर जिंदा होकर आ गया, पीकॉक तो मोर जिंदा होकर आ गया, कौवा तो कौवा जिंदा होकर आ गया, बतख तो बतख जिंदा होकर आ गई। तो जाहिरी किस्सा बस इतना ही बयान करता है, अगेन दिस इज अ स्टोरी। और अगर ये पास्ट का वन टाइम इंसिडेंट है तो कुरान तारीख की नहीं तालीम की किताब है। इसमें हमारे लिए क्या तालीम है ये सोचना होगा। इसमें है जब इब्राहिम ने अल्लाह से कहा ए परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करता है, अल्लाह ने फरमाया क्या तुमको इसका यकीन नहीं है? मूसा ने इब्राहिम ने कहा बेशक यकीन है, लेकिन मैं दिल का इत्मीनान हासिल करना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया चार परिंदों को पकड़ अपने पास मंगा लो और उनके टुकड़े टुकड़े करा दो, फिर उनमें से एक एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। अब आप ये कुरान का वाकया है, ठीक है। इब्राहिम कहता है रब्बी अरीनी कैफा तुही अल मौता, रब मुझे दिखा तू मुर्दे को कैसे जिंदा करता है। तो खुदा ने उसको ये स्कीम बताई। अब जाहिरी वाकई में वो समझते हैं कि हजरत इब्राहिम ने सचमुच चार परिंदे लिए, उनको जिबा किया, उनके गोश्त को पहाड़ों पे रखा और फिर उनका नाम लिया तो वो जिंदा हो गए और इब्राहिम मुतमईन हो गए क्योंकि उन्होंने एक मौजजा देख लिया। लेकिन चूंकि हम मानते हैं खुद रसूल अकरम का फरमान है हर आयत की 7 बातिन होते हैं बल्कि 70 बातिन भी होते हैं, तो यहां पर इसका मकसद क्या है, इसके लिए मौलाना रूमी की एक नजम है, उसमें वो फरमाते हैं कि चार मुर्गाने खलील। ये मत समझो कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के ये चार परिंदे सचमुच दुनिया के कोई परिंदे थे, बल्कि ये तुम्हारे नफ्स की चार बुरी आदतें हैं। बतख जो है वो लालच को जाहिर करती है, पीकॉक जो है वो प्राइड को जाहिर करता है, पीकॉक मोर जो है वो फखर की अलामत है, रूस्टर जो है वो लस्ट और हवस की अलामत है, और कवा जो है वो दुनिया की जिंदगी को बहुत ओन करना चाहता है और दुनिया की जिंदगी को ही ये लंबा जीता है और दुनिया की जिंदगी का बहुत ख्वाहिशमंद होता है। तो रूमी फरमाते हैं कि तुम्हारे नफ्स में जब ये चार चीजें पैदा हो जाएं तो तुम जिंदा होने के बावजूद अंदर से मर चुके होंगे, तुम मुर्दा हो चुके होंगे, फिर तुमको इन चार चीजों को ट्रांसफॉर्म करना होगा। लालच की जगह पर किनाअत, फखर की जगह पर हलीमी, लंबी लंबी जिंदगी की उम्मीद के साथ आखिरत की जिंदगी की सोच, हर चीज की अपोजिट सिफत तुमको अपने अंदर पैदा करनी होगी, तब तुम जिंदा हो जाओगे। अगर ये चार चीजें तुम्हारे अंदर हैं तो तुम मरे हुए हो। पीर नासिर खुसरो की एक नजम भी है जिसमें पीर फरमाते हैं तुम्हारे 7 दोस्त ऐसे हैं जिनको अपने अंदर से फौरन से निकाल दो और इसकी जगह 7 अच्छे दोस्तों को ले लो। पीर फरमाते हैं दरीन जिंदान हरीफी चंद बातुस्त कजान यौरान जुदाई बायदत चुस्त, कि तेरे साथ इस कैदखाने में ऐसे साथी हैं जिनसे तुझको जुदाई हासिल करनी चाहिए। यकी बुखलो दूम खश्म सूम आस चाहरु मकरो पंजुम शहवत नाज, इनमें से एक कंजूसी है, दूसरा गुस्सा है, तीसरा तमा यानी लालच है, चौथा मकर है और पांचवा हवस और फकर है। फिर पीर आगे फरमाते हैं छठा तकबुर है और 7वां हसद है। ये तेरे 7 दोस्त तेरे रूहानी काम में खलल डालेंगे। फिर फरमाते हैं इन दोस्तों को छोड़कर बुजुर्ग दोस्तों को तलाश कर, और वो बुजुर्ग दोस्त कौन है? और वो बुजुर्ग और नामर दोस्त तवाजो पस करम ऑन की किनाअत कम औजारी व पस परहेज उतात। फरमाते हैं तवाजो यानी आजिजी, करम बख्शिश करना, किनाअत कम आजारी यानी लोगों को तकलीफ न देना, परहेज इताअत और हिकमत। फरमाते हैं इन सात दोस्तों को छोड़ दो, इन सात दोस्तों को अपनाओ, तुम खुद अपनी हस्ती के मालिक हो, तुम्हारा इख्तियार है तुम किसको अपनी हस्ती में आने देते हो। तो तुम ऐसे दोस्तों से अपनी जान छुड़ाओ और यहां पर आओ। ए जी चार पारी ने तमें पांच जवारो, चार अच्छी आदत को अपनाओ और पांच बुरी आदतों को अपने अंदर से निकालो। और पीरों ने इसकी तशरीह भी की है, तो आप देखें ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी खुदा का रंग है। यानी जो आला दर्जे का अर्श बनाना है वो शायद हम अभी इस काबिल नहीं हुए, इतनी रूहानी तरक्की नहीं है कि हम ऐसा कर सकें, लेकिन कम से कम उस अर्श की तामीर तो शुरू करें, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से खुदा के उस रंग को जगा दें। तो ये जो चार परिंदों की कहानी है ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है कि तुम अपने अखलाक को ट्रांसफॉर्म करो, तुम जिंदा हो जाओगे। इसका मतलब इंसान के अंदर एक टोटल एनर्जी है, उसके अंदर गुस्से का अलग दरवाजा, हसद का अलग दरवाजा नहीं है, एक टोटल एनर्जी है। अगर आप उसको गुस्से में खर्च करेंगे तो टोटल एनर्जी गुस्से में निकल जाएगी, अगर आप उसको टोटल एनर्जी को मोहब्बत में खर्च करेंगे तो टोटल एनर्जी मोहब्बत के रास्ते से आएगी। तो आपके अंदर नेगेटिव पावर है मगर उसको आपको पॉजिटिव बनाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और उसकी एक अच्छी मिसाल है, अगर आपके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा हो, अच्छी नस्ल का हॉर्स हो, लेकिन वो आपको ऊपर चढ़ने नहीं देता है, आप घोड़े को काट देंगे या इसको ट्रेन करेंगे? आप ट्रेन करेंगे तो वो घोड़ा आपके काम आएगा। तो अपने नेगेटिव पावर्स को ट्रांसफॉर्म करके उसकी ताकत को इस्तेमाल करना होता है, न ये कि उसको अपनी हस्ती से निकाल देना होता है। तो अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है इसका मतलब उसके अंदर बहुत पावर है और उस पावर को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कहते हैं जहर को आप ऐसे ही खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन इसी जहर की छोटी सी मकदार को जब आप दवाई में डालते हैं तो ये आपकी बहुत सी बीमारियों का इलाज करती है। तो इस छोटे से जहर को आप रिफाइन करते हैं और उसको आप अपनी जिंदगी का सोर्स बनाते हैं। तो इस तरह से ये चार परिंदों की कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। तो मौलाना हाजी इमाम के फरामीन को आप देख लें, अखलाक, मोहब्बत, ब्रदरहुड और इन चीजों की कितनी तारीफ है। रसूल अकरम सल्लम की एक हदीस है, उन्होंने सहाबा से कहा कि क्या मैं तुमको ऐसी बात न बताऊं जो नमाज और रोजे से भी बढ़कर है? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अगर ऐसी कोई बात है तो आप जरूर बताएं। तो कहते रसूल ने फरमाया फितना मत करवाना। तो जाफर शाह फुलवारवी एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने इस हदीस के को एक्सप्लेन किया है कि वो शख्स जो नमाज रोजा हज शायद नहीं भी करता है मगर फितना भी नहीं कराता है, वो उस शख्स से बेहतर है जो नमाज रोजा हज इबादत को करता हुआ नजर आता है मगर उसका अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है और वो दूसरी चीजों में अपने आप को चेंज नहीं करता है। तो जहां नूर की बात है ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। वो आखिरी बुलंदी का नूर अगर हम नहीं अपना सकते हैं तो ईमान, अखलाक, अकीदत, मोहब्बत और इंसानों से अच्छा सलूक करना, इससे हम एक अच्छे रंग में रंगते जाएंगे। और फिर अगर ये रंग मौला को पसंद आ गया, हमारी आदत मौला को पसंद आ गई, तो हमें वो इस पूरे रंग में रंग लेगा।